जैसे जैसे वीणा की छुट्टियां खत्म होने को आ रही थी, देव की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वीणा की बदली की बात अभी अधर में ही लटकी हुई थी। ऐसे में वीणा के पास देहरादून जाने के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, छुट्टियां बढ़वा सकती थी बिना वेतन के। देव का मन किसी अज्ञात शंका से बेचैन था। वीणा देहरादून जाएगी, बातों ही बातों में बात निकल जाएगी। वह अपने माता पिता से सब कह बैठी तो न जाने क्या होगा। उससे दूर रहेगी तो कहीं उसके प्रति उसका मोह कम ना हो जाए। ऐसा कुछ वीणा के मन में नहीं था, ना ही वह मन के किसी कोने में इसी डर को अब बैठा देख रही थी। 4 महीने बीतने को आ गए थे। देव भला चंगा था और अब उसकी बीमारी की बात तो उसके मनोमस्तिष्क से मिट गई थी। सुबह की उसकी परेशानी उसे अपनी दिनचर्या का एक अंग लगने लगी थी। लेकिन जिसके मन में चोर होता है, परेशान वह बेवजह होता रहता है। देव परेशान था और यही सोच रहा था कि कैसे रोके वीणा को अपने से दूर जाकर रहने को। सीधे कहता तो वह नौकरी तो छोड़ती नहीं, सरकारी नौकरी आसानी से तो नहीं मिलती। ऐसे में भूमिका बांधने की कोशिश करता रहता, बात बात में घुमा फिराकर वीणा को अपनी भावनाओं की धारा में बहा कर ले जाता। वीणा, मेरा जन्म सुधर गया, तुम्हारे आने के बाद लगता है मैं कभी अकेला था ही नहीं। बीते दिन अब बुरे स्वप्न की भांति लगते हैं, कुछ याद नहीं करना चाहता। वीणा मुस्कुरा देती, उसकी भावनाओं की कद्र करती थी। देव का साथ पाकर वह भी खुश थी। जब भी उसके साथ कॉलेज जाती और देखती देव के प्रति सभी के मन में बसे आदर भाव को, उसके साथियों में देव के दबदबे को, सभी छात्रों में देव के प्रति आदर को, मन खिल उठता उसका। स्कूल में तो वह प्राथमिक स्तर की शिक्षिका थी, बच्चों को पढ़ाती थी। यहां तो सब कॉलेज में एमए बीए के व्यस्क छात्र थे, छात्र ऐसे की जरा सी चिंगारी को हवा देकर आग बना देने वाले। वही छात्र जो प्रिंसिपल के सामने तो नारे लगाते और देव को सामने पाकर एकदम चुप हो जाते थे। क्या था ऐसा आकर्षण, कैसा था ऐसा तेज देव के चेहरे पर कि सब उससे बात करके सौम्य हो जाते थे। यही कहते सुना था उसने सभी से कि सब कुछ ठीक रहा तो देव समय से पहले प्रोफेसर बन जाएगा और फिर एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर। इतना गर्व था उसके सभी साथियों को। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनना उसके भाग्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऐसी भावनाओं की तरंगों में बहती वीणा को आखिर एक दिन देव ने कह दिया, वीणा, हमें किसी बात की कमी नहीं है, तुम्हारी बदली की मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं, ऐसे में तुम मुझसे दूर जाकर रहो, इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता, अच्छा रहेगा कि हम दोनों साथ रहें, कोशिश करते रहें, और ऐसे में तब तक तुम बिना वेतन के छुट्टी लिए रहो, इससे स्कूल के अधिकारियों पर दबाव भी बना रहेगा और जल्दी से तुम्हारी बदली हो जाएगी। क्योंकि वीणा देव को अपने से या अपने हर किसी शुभ चिंतक से अधिक समझदार मानने लगी थी, उसने देव की इस राय को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसी आशय की चिट्ठी अपने स्कूल में डाल दी। उधर देहरादून में जब मां निर्मला को इस बात का पता लगा तो उन्होंने एक ही शब्द में बात समाप्त कर दी, हमारी बेटी शादी के बाद खुश है, जैसा वह चाहती है या जैसा उसका पति चाहता है वही अच्छा है। अब हमें अपनी राय नहीं देनी, वह छुट्टी ले या नौकरी करे, अब यह उसका निजी मामला है। लेकिन उसकी बहन सुनीता को इस बात का जब पता लगा तो उसने अपनी नाराजगी स्पष्ट लिख दी थी। मुझे मम्मी से पता लगा तुम्हारी लंबी छुट्टी के आवेदन का, यह तुमने ठीक नहीं किया, सरकारी नौकरी कोई रास्ते पर पड़ी नहीं मिलती, जब तक बदली नहीं होती तुम्हें देहरादून जाकर रहना चाहिए और नियमित रूप से स्कूल जाना चाहिए। मुझे देखो, शादी के बाद साल में सिर्फ 2-3 महीने ही अपने पति के पास रह पाती हूँ। हिमाचल के एक कोने में मेरा स्कूल है और दूसरे कोने में उनका होटल, लेकिन नौकरी की वजह से हम दोनों ने परिस्थितियों से समझौता कर रखा है। तुम्हारा पति भी तो नौकरी ही करता है, ऐसे में तुम्हें सदैव अपने व अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए नौकरी पर नियमित रूप से जाना चाहिए। वीणा को बात तो सुनीता की भी उचित लगी, लेकिन पत्र पढ़कर देव की प्रतिक्रिया देखकर उसने अपनी राय नहीं बदली। देव ने पत्र पढ़ते ही कहा था, ठीक है सुनीता दीदी तुमसे बड़ी है, लेकिन अपनी परिस्थितियों की तुलना वह हमसे नहीं कर सकती, और दूसरे हमारे निजी मामले में कोई इस तरह दखल अंदाजी करे यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे में वीणा ने 2 शब्दों का पत्र सुनीता को भेज दिया, दीदी आपकी राय पर मैं अमल नहीं कर सकती, मेरी परिस्थितियां आपसे अलग हैं, मेरे पति की मुझ पर नौकरी करने की बंदिश नहीं है, और अभी वक्त ही कितना हुआ है, वे मेरी बदली करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, बदली हो जाएगी तब मैं अपने घर के साथ साथ अपनी नौकरी के प्रति न्याय कर सकूंगी, और जब तक बदली नहीं होती मैं अपना घर अपने पति के निकट ही रहना चाहती हूँ। वीणा ने इतनी सी बात लिखकर सुनीता को यह एहसास करवा दिया था कि उसकी निजी जिंदगी में सुनीता की राय कोई मायने नहीं रखती, वह अपनी जिंदगी स्वयं जीना चाहती है, उसे अपने विवाहित जीवन में किसी तीसरे की दखल अंदाजी उचित नहीं लगती। इसके बाद सुनीता की कोई चिट्ठी वीणा को नहीं आई।